एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से इंसानों को लुभाता रहा है।
हाँ, प्राचीन मिस्र की वो रहस्यमयी दुनिया।
बिल्कुल, और उनकी वो मशहूर मृतकों की पुस्तक, या जिसे बुक ऑफ द डेड कहते हैं।
हालांकि उसे किताब कहना शायद मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है, है ना?
हाँ, सही कहा। ये दरअसल मंत्रों और जानकारियों का एक संग्रह है।
और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये बातें आज भी उतनी ही अहम है।
जैसे?
जैसे कि भाई, मौत के बाद क्या होता है, एक अच्छा नैतिक जीवन जीने का क्या मतलब है।
ये सवाल तो हमेशा से रहे हैं।
बिल्कुल। तो ये संग्रह हमें प्राचीन मिस्र के लोगों की सोच, उनकी उम्मीदें, उनके डर, इन सबको समझने का एक जरिया देता है।
तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, है ना,
कि ये था क्या, इसका मकसद क्या था।
तो हाँ, ये हमें आज क्या सिखा सकता है?
तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि भाई, इसे लिखा किसने?
हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। इसका कोई एक लेखक नहीं है।
अच्छा, मतलब किसी एक ऋषि या ज्ञानी ने नहीं लिखा इसे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो करीब, आप सोचिए, 1500 साल के लंबे दौर में तैयार हुआ।
1500 साल?
हाँ, लगभग 1550 ईसा पूर्व से शुरू होकर मिस्र के जो पुजारी थे, जो शास्त्री थे, धर्मगुरु थे, उनकी कई पीढ़ियों की मिलीजुली कोशिशों का नतीजा है ये।
बाप रे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये बनता गया।
सही। और ये लोग सिर्फ मतलब लिखने वाले नहीं थे, वो पवित्र ज्ञान के रखवाले थे। और वो चित्रलिपि, हायरोग्लिफ्स जिसे कहते हैं, उसके उस्ताद थे।
हाँ, वो तस्वीरें जैसी लिखावट।
बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि वो मानते थे कि इन लिखावटों और शब्दों में असल शक्ति होती है।
शक्ति? कैसे शक्ति?
रचने की, बचाने की शक्ति। वो इसे हेका कहते थे। उनका मानना था कि सही मंत्र बोलने या लिखने से वाकई असर होता है।
अच्छा, यानी शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, उनमें जादू था।
हाँ, एक तरह से। और ये ज्ञान पहले सिर्फ राजाओं के लिए था, पिरामिड में लिखा जाता था।
फिर आम लोगों तक कैसे पहुंचा?
धीरे धीरे। फिर ये ताबूतों पर लिखा जाने लगा, और बाद में पपायरस के पन्नों पर लिखकर मरने वाले के साथ रखा जाने लगा।
तो मतलब ये किसी एक इंसान की सोच नहीं?
नहीं, ये पूरी सभ्यता की हजारों साल की समझ है। उनके गहरे डर, उनकी सबसे बड़ी उम्मीदें, सबका निचोड़ है इसमें।
ये बात तो इसे और भी ज्यादा वजनदार बना देती है।
बिल्कुल। अब आते हैं इसके नाम पर। हम तो इसे मृतकों की पुस्तक कह देते हैं।
हाँ, ज्यादातर लोग यही जानते हैं।
पर इसका असली मिस्री नाम था रू नू पेरिट एम हेरू।
रू नू पेरिट एम हेरू, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब कुछ ऐसा है, दिन में आगे आने की पुस्तक, या कह सकते हैं रोशनी में बाहर आने के मंत्र।
दिन में आगे आना, ये तो काफी पॉजिटिव साउंडिंग है, मौत से जुड़ा नहीं लगता।
यही तो खास बात है, ये नाम ही दिखाता है कि वो मौत को अंत नहीं मानते थे।
तो क्या मानते थे?
एक बदलाव, कब्र के अंधेरे से निकलकर एक नई, हमेशा रहने वाली सुबह की रोशनी में कदम रखना।
वाह, ये तो बहुत ही उम्मीद भरी सोच है।
और यही इस किताब का असली मकसद था।
क्या मकसद था?
ये मरने वाले के लिए एक गाइड बुक थी, एक तरह का नक्शा।
नक्शा
कहाँ जाने का?
मौत के बाद की दुनिया का।
वो मानते थे कि मरने के बाद एक खतरनाक सफर तय करना पड़ता है, एक अधोलोक से गुजरना पड़ता है, जिसे वो दुआत कहते थे।
अच्छा, दुआत। तो ये किताब उसमें रास्ता दिखाती थी।
हाँ, ताकि आत्मा भटके नहीं। और मंजिल क्या थी?
क्या थी?
देवताओं का स्वर्ग, जिसे आरु कहते थे, रीड्स का मैदान, वहां पहुंचकर हमेशा के लिए जीना। उस अवस्था को वो अख कहते थे।
अख अवस्था, यानी शाश्वत जीवन।
बिल्कुल। और इस सफर की कामयाबी के लिए, मतलब आरु तक पहुंचने के लिए, तीन चीजें बहुत जरूरी मानी जाती थी।
तीन चीजें कौन सी?
पहली, कि आपने धरती पर एक नेक, सीधा, सच्चा जीवन जिया हो, मतलब आपकी नैतिकता।
ये तो जरूरी है।
दूसरी,
आपको जरूरी मंत्र, पासवर्ड, गुप्त नाम वगैरह पता हो, यानी पवित्र ज्ञान।
ज्ञान।
और तीसरी,
जब आपका अंतिम फैसला हो, हिसाब किताब हो, तो आप उसमें खरे उतरे।
हिसाब किताब, जैसे हमारे यहाँ चित्रगुप्त का लेखा जोखा होता है।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो ये किताब एक तरह का निजी दिव्य रोडमैप थी, जिसे मरने वाले के साथ उसकी कब्र में रखते थे।
समझ गई। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आपने कहा इसमें मंत्र थे, कितने कोई अध्याय वगैरह थे?
नहीं, आधुनिक किताबों जैसे अध्याय नहीं थे। ये करीब 200 ज्ञात मंत्रों का संग्रह है।
200?
हाँ, और हर किसी के लिए ये थोड़ा अलग होता था उसकी जरूरत के हिसाब से, पर मोटे तौर पर आत्मा की यात्रा के हिसाब से इसे चार हिस्सों में बांट सकते हैं।
ठीक है, तो पहला हिस्सा क्या था?
पहला पड़ाव था कब्र से निकलना। इसे कह सकते हैं दिन में आगे आना, जैसा कि नाम है। ये मंत्र 1 से 25 तक हो सकते हैं।
अच्छा, मौत के तुरंत बाद वाला समय।
हाँ, आत्मा अभी कब्र में ही है। यहाँ मकसद है उसे मौत की जड़ता या बेहोशी से जगाना और सफर शुरू करने लायक बनाना।
यहीं पर वो बा और का वाली बात आती होगी।
बिल्कुल, बा यानी आपकी आत्मा या शख्सियत और का यानी आपकी जीवन शक्ति। ये शरीर से अलग होते हैं,
इसीलिए मम्मी बनाना इतना जरूरी था उनके लिए।
हाँ, क्योंकि वो मम्मी बनाया गया शरीर आत्मा के लिए दुनिया में एक ठिकाना था, एक लंगर की तरह।
और यहाँ कोई खास रस्म भी होती थी?
हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म थी, मुख खोलने की रस्म। ये मंत्र 23 में आती है।
मुख खोलने की रस्म, ये क्या थी?
ये मम्मी पर की जाती थी जादुई तरीके से उसकी इंद्रियों को फिर से जगाने के लिए,
ताकि वो परलोक में देख सुन सके।
देख सुन सके, बोल सके, खा पी सके। सोचिए कितना प्रतीकात्मक है।
हाँ, मरने के बाद भी जीवन की जरूरतों का ख्याल।
बिल्कुल, कुछ मंत्र आत्मा को कब्र से अपनी मर्जी से आने जाने की ताकत भी देते थे।
अच्छा, तो आत्मा कब्र से बाहर आ गई, अब आगे रास्ता मुश्किल था आपने कहा।
बहुत मुश्किल। दूसरा पड़ाव है उस खतरनाक अधोलोक द्वात को पार करना। ये मंत्र 26 से 90 तक में आता है।
द्वात, ये कैसी जगह थी?
एक भूल भुलैया जैसी, खतरों से भरी, अजीब अजीब जीवों से, राक्षसों से।
हाँ?
यहाँ बचने के लिए जादुई कवच चाहिए था।
और वो कवच क्या था?
मंत्र।
मंत्र तो थे ही,
लेकिन सबसे बड़ा हथियार था ज्ञान।
ज्ञान? कैसा ज्ञान?
देवी देवताओं और राक्षसों के असली गुप्त नाम जानना।
नाम जानने से क्या होता था?
उनका मानना था कि अगर आप किसी का असली नाम जानते हैं तो आप उस पर काबू पा सकते हैं। यही हेका की शक्ति थी, शब्दों और ज्ञान की ताकत।
अच्छा, तो मंत्रों में नाम होते होंगे?
हाँ, फिर सांपों मगरमच्छों जैसे दुश्मनों से बचाने वाले मंत्र थे। और एक और कमाल की चीज थी।
क्या?
रूप बदलने की क्षमता देने वाले मंत्र।
रूप बदलना? जैसे?
जरूरत पड़ने पर आत्मा बाज बनकर उड़ सकती थी, या बगुला बन सकती थी, या कमल का फूल बनकर अपनी पवित्रता दिखा सकती थी। अलग अलग चुनौतियों के लिए अलग अलग रूप।
ये तो बिल्कुल फैंटेसी फिल्मों जैसा लग रहा है।
हाँ, उनकी कल्पना बहुत उर्वर थी। और इसी हिस्से में एक बहुत मशहूर मंत्र आता है, मंत्र 30B।
30B, क्या खास है इसमें?
इसे हार्ट स्कार्प स्पेल कहते हैं। ये एक तावीज जो स्कार्प बीटल जैसा होता था उस पर लिखा जाता था और मम्मी के दिल पे रखा जाता था।
दिल पर? क्यों?
ये दिल से की गई एक अपील थी, एक प्रार्थना।
दिल से प्रार्थना? क्या कहते थे उसमें?
उसमें लिखा होता था, ए मेरे दिल, जो मुझे मेरी माँ से मिला, मेरे खिलाफ गवाह के रूप में खड़े मत होना, न्याय के दरबार में मेरा विरोध मत करना।
अरे, मतलब अपने ही दिल से कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ मत बोलना।
हाँ, क्योंकि वो मानते थे कि आपका दिल, आपकी अंतरात्मा ही आपकी करनी का गवाह है। ये कितनी गहरी मनोवैज्ञानिक समझ दिखाता है।
वाकई, अपनी ही अंतरात्मा से डर, कमाल है।
तो ये मुश्किल सफर और रूप बदलने की कला सीखने के बाद आता है सबसे बड़ा इम्तिहान,
तीसरा पड़ाव।
हाँ, तीसरा पड़ाव, फैसले की घड़ी। इसे कहते हैं दो सत्यों का हॉल। ये मंत्र 125 और उससे जुड़े ग्रंथों में है।
दो सत्यों का हॉल, यहीं पर वो हिसाब किताब होता था।
बिल्कुल, ये पूरी किताब का नैतिक और आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ ओसीरिस देवता, जो अधोलोक के राजा थे, और उनके साथ 42 दूसरे दैवीय जज बैठकर आपका हिसाब करते थे।
42 जज?
हाँ, और यहाँ सबसे अहम चीज है मात का सिद्धांत।
मात, ये क्या है?
मात का मतलब है सच्चाई, न्याय, संतुलन, ब्रह्मांड की सही व्यवस्था। आपका पूरा जीवन इसी मात के तराजू पर तौला जाना था।
और तौलता कौन था?
आपका दिल। वो मानते थे कि दिल ही विवेक का केंद्र है, वही आपका गवाह है।
तो इस हॉल में होता क्या था?
सबसे पहले मरने वाले को अपनी बेगुनाही साबित करनी होती थी।
कैसे?
इसे कहते हैं नकारात्मक स्वीकारोक्ति। वो 42 पापों की एक लिस्ट पढ़कर कहता था कि उसने ये सब नहीं किया है।
अच्छा, क्या क्या पाप होते थे इस लिस्ट में?
बहुत कुछ, बड़े अपराध जैसे मैंने हत्या नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, से लेकर सामाजिक बुराइयां जैसे मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैंने गपशप नहीं की, मैं घमंडी नहीं रहा।
अरे वाह, गपशप न करना भी शामिल था।
हाँ, और धार्मिक अपराध भी, जैसे मैंने किसी देवता की निंदा नहीं की, मैंने जानवरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। हर पाप के लिए एक जज होता था और मृतक को उस जज का नाम लेकर अपनी सफाई देनी होती थी।
नाम जानना यहाँ भी जरूरी था।
बिल्कुल, ज्ञान और नैतिकता साथ साथ। इसके बाद होती थी सबसे महत्वपूर्ण चीज,
दिल का वजन।
हाँ, दिल का तोला जाना। अनुबिस देवता, जिनका सर सियार जैसा था, वो आपके दिल को एक तराजू के पल्ले पर रखते थे।
और दूसरे पल्ले पर?
दूसरे पल्ले पर होता था मात देवी का पंख, सच्चाई और न्याय का प्रतीक।
और फिर?
अगर आपका दिल उस पंख जितना हल्का या उससे भी हल्का होता,
तो मतलब आपने नेक जीवन जिया है।
सही, तब आपको सच्ची आवाज वाला यानी माखेरू घोषित किया जाता था, आप पास हो गए।
और अगर दिल भारी निकला तो, पापों के बोझ से?
तो फिर सजा मिलती थी। वहां अमित नाम का एक भयानक दानव इंतजार कर रहा होता था।
अमित, ये कैसा था?
उसका सिर मगरमच्छ का, शरीर शेर का और पिछला हिस्सा दरियाई घोड़े का था। बहुत डरावना।
वो क्या करता था?
वो उस पापी भारी दिल को खा जाता था।
खा जाता था? तो इसका मतलब क्या हुआ, नर्क में जाना?
नहीं, नर्क की आग से भी ज्यादा खौफनाक सजा थी। इसका मतलब था हमेशा के लिए मिट जाना, आपका अस्तित्व ही खत्म, नेअंत में खो जाना।
हमेशा के लिए खत्म हो जाना, ये तो वाकई डरावना है।
हाँ, लगता है मिस्रवासी सजा से ज्यादा इस विस्मृति, इस गुमनामी से डरते थे।
तो जो लोग इस इम्तिहान में पास हो जाते थे, उनका क्या होता था?
उनके लिए खुलता था चौथा और आखिरी पड़ाव का दरवाजा,
स्वर्ग।
हाँ, दोष मुक्ति और हमेशा की जिंदगी। वो जगह थी आरू यानी रीड्स का मैदान। ये मंत्र 110 और बाकियों में आता है।
आरू, ये कैसा था, क्या था वहाँ?
बिल्कुल एक आदर्श मिस्र जैसा। हरी भरी जमीन, लहलहाती फसलें, साफ पानी की नदियाँ, हमेशा खुशनुमा मौसम, वसंत जैसा।
सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ, यहाँ मरने वाले को खेती करने के लिए जमीन मिलती थी।
खेती करनी पड़ती थी इस स्वर्ग में भी?
हाँ, लेकिन मजे की बात सुनिए, मेहनत खुद नहीं करनी पड़ती थी।
तो फिर कौन करता था?
इसके लिए वो कब्र में छोटी छोटी मूर्तियां रखते थे अपने साथ, उन्हें शाब्दी कहते थे।
शाब्दी?
हाँ, और मंत्रों के जरिए, जैसे मंत्र 6, इन शाब्दी को हुक्म दिया जा सकता था कि वो आपकी जगह सारा काम करें, खेती करें, नहरें खोदें, सब कुछ।
वाह, ये तो कमाल का जुगाड़ था,
है ना? वहाँ हमेशा खाने पीने की चीजें मिलती थीं, कोई कमी नहीं थी।
और क्या करते थे लोग वहाँ?
आप सूर्य देव रा के साथ उनकी सुनहरी नाव में सफर कर सकते थे, रोजाना दुनिया का चक्कर लगा सकते थे और दूसरे देवी देवताओं के साथ रह सकते थे उनकी संगति में।
मतलब ये कोई बोरिंग जगह नहीं थी?
बिल्कुल नहीं, ये एक खुशहाल, सक्रिय और हमेशा चलने वाली जिंदगी का वादा था, एक परफेक्ट जीवन।
तो इस पूरी यात्रा और इन मंत्रों से क्या खास बातें, क्या संदेश निकलते हैं?
कई गहरे संदेश हैं इसमें। पहला तो यही कि मिस्रवासी जीवन से कितना प्यार करते थे, मौत उनके लिए अंत नहीं थी।
हाँ, वो दिन में आगे आना वाली बात।
बिल्कुल, मौत बस एक रुकावट थी जिसे पार करना था, ये सोच ही जीवन की जीत का ऐलान है।
और दूसरा?
दूसरी बात, ज्ञान और शब्दों की जबरदस्त ताकत में उनका विश्वास, वो है का।
हाँ, नाम जानना, मंत्र जानना,
सही शब्द बोलना, सही चीजें लिखना, वो मानते थे कि ये सब असल दुनिया पर असर डाल सकता है, आपको बचा सकता है। भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं थी, एक जादुई औजार थी।
ये दिलचस्प है। और तीसरा?
तीसरा और शायद सबसे अहम, नैतिकता का महत्व, वो मात का सिद्धांत
कि अगर जीवन नेक नहीं जिया तो मंत्र बेकार है।
एकदम सही, दिल का तौला जाना ये साफ करता है कि आखिर में आपका चरित्र ही आपकी किस्मत तय करेगा, जादू टोना काफी नहीं है।
ये तो बहुत गहरी बात है।
चौथा, सिर्फ जीना नहीं बल्कि बदलकर बेहतर बनना,
वो अख बनने वाली बात।
हाँ, मरने वाला एक अख यानी एक रूपांतरित शक्तिशाली आत्मा बनना चाहता था जो देवताओं के करीब हो सके, ओसीरीज या राज ऐसा बन सके। ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, दिव्य बनने की चाह थी।
और कुछ?
एक और पहलू जो मुझे दिलचस्प लगता है वो ये कि ये परलोक का सफर काफी कुछ उनके अपने समाज जैसा लगता है।
कैसे?
नियम कायदे हैं, दरवाजों पर पहरेदार हैं जो पासवर्ड पूछते हैं, जांच पड़ताल होती है, एक पूरा न्यायिक सिस्टम है। जैसे उस दुनिया में भी एक किस्म की ब्यूरोक्रेसी चल रही हो, मिस्र का राज्य जैसा था वैसे ही परलोक बना दिया।
हाँ, ये तो है, सरकारी दफ्तर जैसा।
और आखिर में शरीर का महत्व, आत्मा चाहे जितनी यात्रा करे, वो ममी बनाया गया शरीर जरूरी था।
वो लंगर वाली बात।
हाँ, वो आत्मा के लिए इस दुनिया में एक कनेक्शन था, इसीलिए ममीकरण और वो मुख खोलने की रस्म इतनी अहम थी। शरीर और आत्मा का गहरा रिश्ता था उनके लिए।
इन मंत्रों में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे मंत्र 125 में वो कहना कि मैं आपको देवताओं को जानता हूँ और मैंने लोगों के प्रति पाप नहीं किया है।
ये दिखाता है कि परलोक में कामयाबी के लिए ज्ञान और नेकी दोनों जरूरी थे, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा।
सही, या फिर वो हार्ट स्कार वाली बात, मंत्र 30B, हे मेरे दिल मेरे खिलाफ गवाही मत देना।
हाँ वो तो बहुत असरदार है, अपनी ही अंतरात्मा से बात करना।
बिल्कुल, कितना गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है कि आपका अपना जमीर ही आपका सबसे बड़ा गवाह या मुजरिम बन सकता है। आज भी ये सच है ना?
हाँ सच है। और कोई?
एक और है, कुछ मंत्रों में मृतक खुद को रा या ओसीरिस जैसा बताने लगता है। एक जगह वो कहता है, मैं कल आज और कल हूँ और मुझ में फिर से जन्म लेने की शक्ति है।
ये तो बड़ा दावा है।
हाँ, ये सिर्फ अमरता की इच्छा नहीं है बल्कि एक तरह से खुद को दिव्य मानने, पुनर्जन्म के चक्र पर जीत पाने का ऐलान है।
ये सुनने में बहुत रोचक है, लेकिन क्या आज की दुनिया में, हमारी जिंदगी में इन बातों का कोई मतलब है? क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं?
मुझे तो लगता है हाँ बिल्कुल सीख सकते हैं।
जैसे?
क्या सीख सकते हैं?
जैसे वो मात का सिद्धांत और वो नकारात्मक स्वीकारोक्ति।
हाँ, वो 42 पापों वाली लिस्ट।
हम भी तो सोच सकते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, अपने लिए एक लिस्ट बना सकते हैं, आज मैंने क्या गलत नहीं किया।
अच्छा,
जैसे?
जैसे मैंने आज ऑनलाइन कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाई, या मैंने किसी जरूरतमंद को देखकर अनदेखा नहीं किया, मैंने बेवजह किसी का दिल नहीं दुखाया।
ये तो एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ।
बिल्कुल, यह हमें ज्यादा सचेत, ज्यादा नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। रोज का आत्मविश्लेषण।
ये अच्छी बात है। और कुछ?
और जिस तरह मिस्रवासी मौत जैसी बड़ी सच्चाई के लिए इतनी तैयारी करते थे।
हाँ, पूरी गाइडबुक बना ली थी उन्होंने।
तो क्या हम जिंदगी के बड़े बदलावों के लिए, जैसे नौकरी छूटना, रिटायरमेंट, किसी अपने का दुनिया से जाना, क्या हम उनके लिए वैसी ही तैयारी करते हैं?
शायद नहीं, हम अक्सर डर जाते हैं।
वही, शायद हम उनसे सीख सकते हैं कि योजना बनाना, अज्ञात चीजों को समझने की कोशिश करना डर को कम कर सकता है, चुनौतियों को एक सफर का हिस्सा मानना ना कि अंत।
ये भी सही है। और वो शब्दों की ताकत वाली बात है का?
हाँ वो, और आजकल की जो पॉजिटिव एफर्मेशंस की बात होती है।
हाँ, कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो तो अच्छा होगा।
कहीं ना कहीं एक रिश्ता दिखता है ना? हम जो कहते हैं, जो सोचते हैं, उसका हमारी जिंदगी पर, हमारे मन पर असर पड़ता है। ये विचार तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
हाँ ये तो है, भाषा और इरादे की शक्ति।
और सबसे बढ़कर मुझे लगता है ये हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया और सोच को समझने का मौका देता है।
सांस्कृतिक सहानुभूति।
ये दिखाता है कि इंसान हजारों सालों से उन्हीं बड़े सवालों से जूझ रहा है जिनसे हम आज जूझ रहे हैं। जीवन, मृत्यु, नैतिकता, अस्तित्व का मतलब, ये हमारी समझ और सहानुभूति को बढ़ाता है।
तो आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही है सबसे?
मेरे लिए शायद ये कि ये किताब मौत के डर से ज्यादा जिंदगी जीने और मुश्किलों से पार पाने की इंसानी इच्छा शक्ति का जबरदस्त सबूत है। नेकी, ज्ञान और तैयारी, ये तीन स्तंभ थे उनके लिए और शायद हमारे लिए भी आ सकते हैं।
हाँ, और ये भी कि ये शायद इतिहास में मौत के बाद की जिंदगी की सबसे ज्यादा उम्मीद भरी और सबसे विस्तार से सोची गई कल्पनाओं में से एक है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक अच्छा नैतिक जीवन जीना ही शायद सबसे बड़ी तैयारी है, न सिर्फ किसी काल्पनिक परलोक के लिए बल्कि शायद इसी दुनिया में एक सार्थक जीवन जीने के लिए भी।
आखिर में एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। आपने कहा कि लगता है मिस्रवासी सजा से ज्यादा गुमनामी से डरते थे, वो अमित द्वारा खाए जाने यानी हमेशा के लिए मिटा दिए जाने से।
हाँ, ऐसा प्रतीत होता है।
तो आज हम, आज का समाज जीवन के अंत के बारे में सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? क्या वो दर्द है, अकेलापन है, मौत का अनजानपन है, या ये डर कि हमें भुला दिया जाएगा? और क्या हम उस डर का सामना करने के लिए कोई तैयारी करते हैं जैसे मिस्रवासी करते थे? सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, एक गहरा सवाल है ये।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।